हम लोग गुरु वैष्णवों के आदर्श में जहाँ उपस्थित किए हैं, यह मथुरा के मध्यवर्ती मध्यकर्णिका स्वरूप अनंत पद्मनाभ जी का स्थान है। जबकि आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने यहाँ पर मथुरा में प्रकट किए और देवकी वसुदेव के सामने और यहाँ से गोकुल गए। गोकुल में जा करके निराया कि वहाँ 2.5 वर्ष तक, 3 वर्ष 4 महीना तक, इसके बाद में वृंदावन में छठे ग्राम में निवास किए। वहाँ से उन्होंने बाल पौगंड और कैशोर की लीलाएं की हैं। इसी प्रकार से ब्रज के अंतर्गत द्वादश वर्ण 12 वर्णों में वन विहार करते हुए गोचारण के साथ में विविध प्रकार के सखाओं के साथ में, सखिन के साथ में लीलाएं की हैं। इसके पश्चात 11 वर्ष 8 महीना के हुए तब कृष्ण बलराम अक्रूर के द्वारा प्रार्थित होकर मथुरा में आए, यहाँ पर कंस का वध किया। यहाँ कंस के वध करने के पश्चात 17 बार तक मथुरापुरी में 23 अक्षरणी सेना लेकर के जरासंध आए। 17 बार तक सारी सेनाओं को उन्होंने समाप्त किया। 18वें बार में जब काल यवन आए, 3 करोड़ सेना लेकर के मथुरापुरी का आक्रमण किया, तो उस समय उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों पर भारी आपत्ति आएगी और इससे समस्त भक्तजनों को बड़ा कष्ट होगा। तब उन्होंने रणछोड़ जी बन करके द्वारका को प्रस्थान किए, तो द्वारका में समुद्र के मध्य में अपनी पुरी बसाई। तो द्वारकापुरी कुशस्थली में निवास करते हुए 125 वर्ष तक उन्होंने लीलाएं की हैं। इस प्रकार से कृष्ण की लीला अंतर्धान होने के पश्चात उनके नाती प्रपौत्र प्रणाती बजनाथ जी ने मथुरापुरी के इस मथुरा मंडल के सुरसेन देश के राजा बने। पांडवों ने उनको राज्याभिषेक करके दिया था। तब श्री बजनाथ जी ने मथुरापुरी का पुनर्स्थापन किया। जबकि कृष्ण के और समस्त जदुवंशियों के द्वारका में चले जाने के बाद ये ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था और यहाँ पर फिर से प्रजाओं को बसा करके और मंदिरों की स्थापना कर श्री विग्रह की स्थापना करके पुनर्जागरण किया था। इसलिए बजनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित 4 विष्णुओं में अनंत पद्मनाभ और 4 देव में गोविंद देव, केशव देव मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव और गोवर्धन में हरि देव, दाऊजी में बल देव, ऐसे 4 देव 4 विष्णु इत्यादि करके ऐसे ऐसे स्थापना की है बजनाथ जी ने। इसी प्रकार कुंड और सरोवरों की स्थापना की है। 4 विष्णु जो है मध्य कर्णिकार में अवस्थित है। तो ये विष्णु के रूप में जो महाविष्णु है गरुड़ साई विष्णु, जिनको अनंत पद्मनाभ कहा जाता है, जिनके नाभि सरोवर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और विश्व की रचना की है। विश्व की रचना में ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1 कल्प होता है, 1 दिन में 1000 चौकड़ी विद्या आती है। 1000 चौकड़ी के अंदर में 14 मन्वंतर होते हैं, 14 मनु में जो कि वर्तमान वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। इस प्रकार से 1 कल्प जो है ब्रह्मा जी के 1 दिन में होता है। 1 दिन के अंदर भगवान के लीला अवतार 41 जन प्रकट होते हैं, जो कि नित्य धाम में वैकुंठ ब्रह्मांड से परे, ब्रजा से परे, वैकुंठ आदि धामों में, गोलक वृंदावन में जो कृष्ण के नित्य विहार हैं, नित्य लीलाएं हैं, उन लीलाओं को इस जगत में भी प्रकट करते हैं। जैसे कि अभी वैवस्वत मन्वंतर के 16वें चतुर्युगी में भगवान वराहदेव जी का आविर्भाव हुआ है, 8वें चतुर्युगी में बामनदेव जी का आविर्भाव हुआ है, तो 22वें चतुर्युगी में बामनदेव जी का आविर्भाव हुआ है, 24वें चतुर्युगी में भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ है और 28वें चतुर्युगी के द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ है। इसी प्रकार ऐसे लीलाओं का क्रम है जो 41 अवतारों का वर्णन आता है लीलावतारों का, और 1000 चतुर्युग में 1000 युगावतार आते हैं, 4000 युगावतार। इसी तरह से गुणावतार, मन्वंतरावतार, सप्तदिशावतार और वैभव आदि करके असंख्य अवतार भगवान के जगत में प्रकट होते हैं और लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो सर्व के मूल समस्त अवतारों के आदि अनादि निदानम मूलम बीजम, मूल बीज स्वरूप अनंत पद्मनाभ को कहा जाता है, जो कि उनसे समस्त अवतार आदि प्रकट होते हैं इस तरह। परंतु इनमें से जो परावस्था अवतार हैं, जो कृष्ण राम और नृसिंह आदि, ये नित्य धाम में है, गोलोक विहारी श्रीहरि हैं, यहाँ आकर के प्रकट होते हैं, इन धाम के रक्षक हैं, ये ब्रह्मांड को, पृथ्वी को, जहाँ पर अनंत पद्मनाभ ये ब्रह्मांड के अंदर शयन किए हैं, उनके नाभि से ये कमल निकला और ये समस्त ब्रह्मांड का निदान स्वरूप शयन एक रूप में विराट विश्व रूप बने। इसी प्रकार भगवान स्वयं काल रूप में सबको डराते हैं, अंतर्यामी रूप में सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, और भक्तों के ब्राह्मण होकर के भक्तों की सेवा को ग्रहण करने वाले, प्रेम को बढ़ाने वाले ऐसे जो लीला पुरुषोत्तम हैं, हम उनका नमन करते हैं। इस स्थान में प्रणाम करते हुए आप सभी लोग कुछ कुछ प्रणाम देते हुए यहाँ से प्रस्थान करें, जबकि द्वारकाधीश में अभी जाना है। आप दो मिनट बोलो। आदि वराह कृष्ण वराह जी का स्थान है, जो कि कल आप लोगों ने महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण किया था। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश से उनके भ्राता शत्रुघ्न जी मथुरापुरी में आए, मथुरापुरी में आ करके लवणासुर का संहार किया, उसी समय वराहदेव जी की स्थापना हुई। ये आदि वराहदेव केवल आज के ही मूर्ति नहीं है, यह मंदिर केवल आज का ही नहीं है, बहुत प्राचीन से विग्रह है। जबकि ये कैलाश में कुबेर के द्वारा सेवित विग्रह श्री वराहदेव जी हैं, ये कैलाश में ही थे। रावण ने कैलाशपति शिव जी की आराधना करके, उनको प्रसन्न करके स्वर्णपुरी लंका तथा वराहदेव जी को लेकर के भारत के दक्षिण समुद्र में लंकापुरी को बसाया था और वराहदेव जी को रखा था। अपने भाई विभीषण श्री वराहदेव जी की पूजा करते थे। जबकि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय किया, 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती के सहित सवंश रावण का ध्वंस किया, उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी अयोध्या में लौटते समय श्री वराहदेव जी को साथ में ले गए। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने भी वराहदेव जी की सेवा पूजा की। जबकि उनके भाई शत्रुघ्न जी भाई को छोड़ करके आएंगे, श्री राम ने उनको अयोध्यापुरी में, ये मथुरापुरी में उनको राज्याभिषेक कर दिया है, तो भाई के विरह में कैसे रहेंगे। तब श्री राम ने कहा, अच्छा इस वराहदेव जी को तुम साथ में ले जाओ, इन्हीं की सेवा पूजा करना। तो शत्रुघ्न जी यहाँ लवणासुर का वध करके जैसे जैसे मथुरापुरी को बसाया, मथुरापुरी को बसा करके यहाँ पर वराहदेव जी की स्थापना की और सेवा पूजा करते रहे। इस प्रकार ये जो आदि वराहदेव हैं, ये आदि वराहदेव के विषय में ऐसे वर्णन आता है, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के एक कल्प में, जबकि प्रलय के शाम के समय प्रलय हो जाता है, 12 घंटे की रात्रि में 1,000 चतुर्युग के समान लंबे प्रलय में पृथ्वी रथातल गता हो जाती है। तो पानी के अंदर समाई हुई पृथ्वी को फिर से कैसे उद्धार करें, जबकि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से दुहाई करके स्वयं मनु और शतरूपा को प्रकट किए प्रकृति और पुरुष के रूप में, प्रजाओं के सृष्टि के लिए उनको आदेश दिया कि तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि करो। तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमें तो प्रजा सृष्टि के लिए आदेश दिया, पर हमारे निवास स्थान बताइए, हम कहाँ रहें। तो बोले कि पृथ्वी एकमात्र तुम्हारा स्थान है, परंतु अभी तो पृथ्वी रथातल गता है, इस पृथ्वी का उद्धार कैसे हो। तब ब्रह्मा जी के नाक से ही एक सरसों के दाना के बराबर ये वराहदेव जी प्रकट होते हैं और देखते देखते सबके सामने विशाल रूप धारण करते हैं पर्वताकार प्रमाण में, और पानी के अंदर विशाल गर्जन के साथ में प्रवेश किया, और जहाँ रसातल में पृथ्वी स्थिति हुई है वहां से अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठा लिया और बड़े तीव्र गति से पानी के ऊपर नाव के भांति इसको स्थापन कर दिया। इसी तरह से इस पृथ्वी को धारण करने में, उद्धार करने में वराहदेव जी सर्वप्रथम। तो भगवान के कल्पावतारों में एक एक बार एक एक अवतार होते हैं, परंतु बरहा जी का अवतार दो बार होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। जबकि षष्ठ चाक्षुष मन्वंतर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आए, तो उस हिरण्याक्ष के वध करने के लिए, जो कि हिरण्याक्ष महाप्रतापी दैत्य इस पृथ्वी को गदा के प्रहार से पानी के अंदर डुबो दिया और नीचे पहुंचा दिए। इस प्रकार से महाबली हिरण्याक्ष को वध करने के लिए और भगवान युद्ध रस का आस्वादन करने के लिए दूसरे बार में श्वेत वराह के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए आदि वराह को कृष्ण वराह कहा जाता है, दूसरे वराह को श्वेत वराह कहलाता है। वर्तमान में वयोस्यत मन्वंतरे श्वेत वराह कल्पे, इस प्रकार संकल्प में पाठ होता है। तो श्वेत वराह कल्प कहा जाता है, ब्रह्मा जी के एक महीना में 30 दिन में 30 कल्प होता है। ऐसे ऐसे करके वर्ष और वर्ष करके 50 वर्ष में परार्ध, अभी द्विपरार्ध दूसरा परार्ध चल रहा है। इस प्रकार ब्रह्मांड की आयु में ऐसे ऐसे वराह देव जी पृथ्वी को उद्धार करके और हम सब का आश्रय प्रदान करते हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। इनकी प्रदक्षिणा करने से श्री पंडा जी ने जैसे कहा है, सारी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। उनके नासिका के ऊपर में मुखारविंद के ऊपर ये पृथ्वी देवी विराजमान है। इस प्रकार वराह देव जी का स्पर्श का पा करके पृथ्वी देवी बड़े आनंद में मगना है। हम उनकी परिक्रमा करें। आए ब्रजमंडल का दर्शन करके जब गोवर्धन की परिक्रमा लगाए और आकर के गोविंद कुंड में बैठे, तो उस समय छोटे से बालक मेष में श्रीनाथ जी आए दूध का लोटिया लेकर के। बोले, बाबा हमारे ब्रज में कोई भूखा प्यासा नहीं रहता है, तुम बिना खाए पिए ऐसे भूखे प्यासे कैसे पड़े हुए हो। उस समय तो उस बालक ने कहा कि मेरी मैया तुम्हें भूखा जाने करके दूध भेज दिया, तुम दूध पी लेना और इस लोटिया को रख लेना, मैं पीछे ले जाऊंगा। इतना कह करके वो बालक तो मधुर वचनों से उनके चित्त को चुरा कर वहां से चल दिए। माधवेंद्र पुरीपा जो जीवन में कभी किसी से मांग करके खाते नहीं थे, आज माधवेंद्र पुरी जी का चित्त कुछ चलायमान हो गया कि इस बालक ने आज मेरे मन को क्यों हर लिया, ये बालक है कौन। दूध तो पी लिया पर उस बालक में मन बैठा हुआ है। इतने में माधवेंद्र पुरी बाद जी जब रात के समय कुछ ऐसी तंद्रा सी आई झपकी ली, इतने में देखा कि वही बालक उपस्थित हुए। बोले कि माधव, तुम्हारे लिए मैं बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, तुम कब आओगे और मेरी सेवा करोगे। देखो यहाँ जवनों के डर से पुजारियों ने मुझे इस जंगल में फेंक के चला गया है। मैं तभी से पड़ा पड़ा मिट्टी के अंदर में धस गया। तुम इस जंगल में से मुझे निकालो और ऊपर मुझे मेरी स्थापना करके मेरी सेवा पूजा को प्रकाश करो। इस तरह से माधवेंद्र पुरी जी को आदेश दिया। सुबह उठ करके आनर गांव के वहां सब के गांव वालों को बुलाया, बुला करके झाड़ियों को सफाई की, मिट्टी खोद करके श्री गोपाल जी को प्रकट किया। प्रकट करके ऊपर मंदिर के ऊपर वहां पत्थर धर करके गोविंद कुंड के पानी से अभिषेक कराकर उनका सेवा पूजा किया। गांव वालों ने वहाँ जिनके घर में जो कुछ दही दूध मक्खन और रोटी सब्जी जो कुछ बना हुआ जो कुछ था सब कुछ लाए, गोपाल जी को भोग लगाया। तभी से यह अन्नकूट प्रचलन हुआ है। जैसे कृष्ण ने सर्वप्रथम गिरिराज की पूजा की, इसके बाद में माधवेंद्र पुरीपाद जी ने अन्नकूट का प्रचलन किया। उसके पश्चात गोपाल जी ने कहा कि मेरे शरीर में गर्मी नहीं जा रही है, साल भर तक तो अन्नकूट होता ही रहा। इसके बाद में जब गर्मी शांत नहीं हुई, ठाकुर जी ने आदेश दिया कि दक्षिण जाओ और दक्षिण में से मलाई चंदन लेकर के आओ, मेरे शरीर में लगाओ। तब दक्षिण गए तो जाते समय बालेश्वर पहुंचे, जहां ठाकुर जी ने गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुराया और तभी से उनका नाम पड़ गया है खीर चुरा गोपीनाथ। तो माधवेंद्र पुरीपाद जी जगन्नाथपुरी गए और वहां जा करके उन्होंने बहुत सारा चंदन लिया। वहाँ के जगन्नाथ मंदिर के बड़े बड़े पुजारी लोग जो हैं, उन लोगों ने ताम्र पत्र में लिखित करके पासपोर्ट बड़ार पास कराने का वो सब कर दिया व्यवस्था। लोगों द्वारा चंदन ले करके जब फिर से गोपीनाथ मंदिर बालेश्वर में आए, तो ठाकुर जी ने आदेश दिया कि यही चंदन लगाओ, लगाने से हमें ताप शांत हो जाएगा। तब वहाँ चंदन लगाने लगे, जो कि आज तक चंदन की सेवा होती है ऐसे गोपाल जी को चंदन लगाया जाता है। इस तरह से गोपाल जी यहाँ रहे, जो कि ब्राह्मण पुजारियों को रखा गया। पीछे से श्री वल्लभाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु जी के समय में हुए, और इस प्रकार गौड़ीय संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय का दोनों अभिन्न अंग के रूप में परस्पर अंगांगी संबंध रहा है और बड़े तालमेल और बड़े प्रेम मिलाप रहा है। जबकि चैतन्य महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी के घर अड़ैल गांव तक गए थे और महाप्रभु जी से श्री वल्लभाचार्य जी का बहुत बार भेंट संपर्क हुआ है, हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आदि से भी। इस प्रकार से राधा कुंड में जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उपास भजन करते थे तो एक समय मानसी सेवा में कुछ बीमार पड़ गए। मानसी सेवा तो ये थी कि रोज दिन मानसी सेवा करते थे, तो एक दिन बीमार पड़ गए। तो विठल नाथ जी यहाँ से कोई कविराज वैद्य को लेकर के वहाँ पहुँचे। वैद्य जी ने उनके नाड़ी पकड़ करके बताया कि आज इन्होंने चावल का भोजन किया इसलिए इनको बुखार आ गया है। सभी ने कहा कि ये कभी संभव हो ही नहीं सकता, जीवन में जिन्होंने कभी चावल नहीं खाया, एक दोनों मट्ठा पीने वाले 24 घंटे में, ऐसे गोस्वामी जी चावल कैसे खा सकते हैं और उनको बुखार कैसे आया, ये कैसे आप बोल रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे नाड़ी देखने में कोई गलती नहीं हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि पेट में चावल है और पचा नहीं है, उससे ये बुखार आया है। तब गोस्वामी जी ने अपना रहस्य खोला कि आज मैंने ठाकुर जी को मानसी सेवा में सब प्रकार के चावल सब्जी और खीर आदि बना करके भोग लगाया और उसी प्रसाद को मैंने मनी मन ग्रहण कर लिया, इसी से आज मुझे बुखार आया है और कोई बात नहीं है। तो ठाकुर जी की ये इच्छा थी, ऐसे मन से सेवा को कहने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की महिमा को प्रकट कर दी। इस प्रकार से हम लोगों के गोस्वामी वर्गों में और वैष्णव संतों में परस्पर एक सौहार्द भाव बना हुआ था। तो पीछे से श्री वल्लभाचार्य जी के सात पुत्र हुए। इस प्रकार सात घड़ा में जबकि श्री गोपाल जी यहाँ इनके प्रेम में बसीभूत होकर के आए थे, कभी श्री रूप सनातन गोस्वामी आदि ने भी उनका यहाँ दर्शन भी किया है, चैतन्य महाप्रभु जी आए यहाँ भी दर्शन किए हैं। इस तरह से उनके चरणार बिंद जो है जत्तेपुरा में रखे हुए थे, तो गोस्वामी लोग ला करके यहाँ चौबिया परा में रखे थे। आज यहाँ उस चरणार बिंद को जो श्रीनाथ जी के चरणार बिंद के रूप में जानी जाती है, ऐसे जैसे हम सुनते हैं तो ये चरणार बिंद कैसे अपूर्व दिव्य दर्शन है, पहले कभी हम लोगों ने दर्शन नहीं किया है। आज से जमुना प्रसाद जी चौबे जी महाराज ने हम लोगों को दर्शन करा दिए हैं, तो ऐसे यहाँ पर हम प्रणाम करते हुए हम चले। और यहाँ के और कोई विषय हो तो हम लोग गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में तथा श्री चौबे जी के पंडा जी के आश्रम में हम लोग चलते हुए मथुरा शहर के मध्यवर्ती बीच कैणिकार में अवस्थित श्री अनंत पद्मनाभ जी से आदि वराह कृष्ण वराह तथा सिद्ध वराह और श्रीनाथ जी के चरणयुगल तथा श्री द्वारकानाथ जी का दर्शन करके यहाँ पर हम गतश्रम टीला में श्री गतश्रम नारायण जी के चरण सान्निध्य में उपस्थित हुए। मथुरा धाम इसको गोलोक वृंदावन के रूप में ही देखा जाए तो भौम और गोलक पर जगत में सर्वोच्च स्थान सर्वोर्ध्व स्थान जो है उसको गोलोक कहलाता है, और भौम यानी भूमि से संपर्क होने के कारण उनकी लीला भूमि को भौम गोकुल या भौम मथुरा मंडल ब्रजमंडल इसी के रूप में जाना जाता है। तो गोलक में जैसे परात्पर तत्व भगवान कृष्णचंद्र विराजमान है, वहां पर 16 शक्ति के साथ समस्त देवताओं के साथ में समस्त ब्रह्मा शिवादि देवतागण, यहाँ तक कि जितने भी विष्णु परिकर हैं, अंशावतार कलावतार इत्यादि के रूप में जितने भी अवतार केशव नारायण गोविंद मुकुंद मधुसूदन दामोदर ऋषिकेश पद्मनाभ, ये जो 12 देवता हैं तथा नृसिंह हरि जनार्दन आदि करके 8 जन, ये समस्त भगवान विष्णु तत्व हैं, चतुर्भुज रूप में अवस्थित होते हैं और वैकुंठ में इनका नित्य सन्निधान बताया गया है। इसी प्रकार गोलोक वृंदावन में, गोलोक में ये सभी अवतारों का स्थान है जो कि नित्य धाम में अवस्थित हैं, और यहाँ भूम जगत में भी नित्य शिव विग्रह के रूप में भक्तजनों के द्वारा सेवा पूजा को ग्रहण करते हैं और भक्तजनों का मनोनयनानंद वर्धन करते हैं, सबकी इच्छा सर्वान कामान पूरयति, सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से भगवान के अवतार समूह विराजमान हैं। यहाँ पर आप लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष आप लोगों ने सुना है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्रज विलास के श्याम सुंदर ब्रज में विलास करते हुए 11 वर्ष के पश्चात जब मथुरा में आए, कंस का विनाश किया, कंस के मारे जाने पर देवकी वसुदेव को जेल खाने से उन्होंने मोचन किया, बंधन मोचन किया और पिता माता के लिए अपनी क्षमा प्रार्थना की, हमारे आने में देर हो गई है, आप लोगों को दुराचारी कंस ने बहुत कष्ट दिया है, इसके लिए हमें क्षमा करें। तो देवकी वसुदेव के मन में संशय दूर नहीं हुआ कि दुराचारी कंस कैसे मरा जाएगा, ये तो मरने वाला नहीं है, और मर गया ये जो सुन रहा हूँ जदि जी जा, अब एक भी मथुरावासियों का प्राण नहीं रहेगा, सबके प्राण को समाप्त कर देगा, ऐसे ही ये दुराचारी दुष्ट हैं। तो देवकी वसुदेव डरे हुए थे, सबके मन में भी कुछ संशय भरा हुआ था, ये कंस बेहोश होकर के पड़ा हुआ होगा, ये मरे नहीं होंगे। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, बोले कि कंस तो बहुत भारी है, इतना वजन है कि उठा नहीं सके कोई, तो उसके खींचते हुए ले गए, सबके संशय को दूर करने के कारण तथा दुरात्मा होने के कारण उसको खींचते हुए ले गए, जो कि नाला बन गया, कंसखार बतलाता है। इस तरह से वहां ले जाकर के ध्रुव घाट में उनका संस्कार कराया। उसके पश्चात कृष्ण बलराम विश्राम घाट पर आए, यहाँ पर उन्होंने स्नान किया, तो इसलिए यहाँ इस घाट का नाम पड़ा है विश्राम घाट, जहाँ पर स्नान करने से, जहाँ का दर्शन करने से हम लोगों के संसार में आवागमन का सदैव विश्राम हो जाता है, पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है, कृष्ण के चरणों में आश्रय मिलता है। तो वहाँ विश्राम घाट में स्नान करके यहाँ पर गतश्रम नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने वहाँ स्नान करके इसी टीला पर, ऊंच टीला पर आ करके उन्होंने विश्राम किया था, इसलिए यहाँ श्रम दूर करने के कारण गतश्रम नारायण जी बने हैं। शंख चक्र गदा पद्म, ये जो चतुर्भुज रूप हैं, ये विष्णु के रूप होते हैं, जितने भी भगवान के अवतार हैं वे सभी चतुर्भुज रूप में होते हैं, केवल अस्त्र धारण के भेद से, नाम के भेद से ही उनको जाना जाता है। सबके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, केवल धारण करने का एक ही केवल पार्थक्य है, सिद्धार्थ संहिता में इसका वर्णन आया है। 24 अवतारों के 4 ही अस्त्र हैं और 4 अस्त्रों के धारण के क्रम से ये सब नाम से अलग अलग हैं। इस प्रकार यहाँ पर गतश्रम नारायण के रूप में आप विराजमान हैं, नित्य ही सेवा पूजा को ग्रहण करते हैं। जैसे अभी वहाँ बताया था कि भगवान ने मथुरापुरी में कुछ दिनों तक रहते हुए जरासंध के आक्रमण पर एक एक वार में 23 अक्षरणी करके सेनाओं का अपने संहार किया और 3 करोड़ कालजवन जब 3 करोड़ सैनिक लेकर, और उधर से जरासंध ने भी 18 वार में आक्रमण किया, तब यहाँ से धुर्रा ग्वालियर के आसपास धुर्रा में पहुंचकर वहाँ गुफा में मुचुकुंद महाराज के द्वारा कालजवन का अपने विनाश करवाया, और जरासंध के सामने से होते हुए रणछोड़ जी बन करके आप द्वारकानाथ बन गए, अर्थात द्वारका में पहुंच गए, वहां जा करके लीलाएं की। इस प्रकार से द्वारकानाथ कृष्ण जो कि नित्य द्वारका में होते हुए ब्रजवासियों के ब्रजगोपियों के प्रेम को बढ़ाए हैं, जो सुदीर्घ विरह विप्रलम्बमय प्रेम जगत के लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, अनुभूति कराने के लिए इस प्रकार आपने प्रकट किया है। इस विरह विप्रलम्बमय प्रेम जो कि द्वारका में तो रहे हैं, परंतु निरंतर कृष्ण के गोपियों के विरह में सदा सर्वदा रोते रहे, प्रेम में डूबे हुए, और इधर ब्रज गोपियां कृष्ण के विरह में अधीर होती जा रही। जबकि कृष्ण ने कहा है, गोपियों तुम लोगों का मन हमारे बीच में पड़ा हुआ है, मेरा मन प्राण इंद्रिया तुम लोगों के बीच में, जैसे तुम लोग स्वप्न या स्फूर्ति मानती हैं, परंतु मैं तुम लोगों की प्राण रक्षा के लिए निरंतर तुम्हारे मन में, हृदय में, स्फूर्ति में आविर्भूत होता हूँ। स्मरण, स्फूर्ति और आविर्भाव तीनों रूप में तुम्हारे सामने निरंतर हूँ। तुम्हारे साथ लीला विलास करके नीति जाई जदुपुरी जदुपुरी जाता हूँ। चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है, कृष्ण ने कहा तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए सेवी आवे नारायण, नारायण की हम सेवा करते हैं। यादवों के, जदुवंशियों के, गोवजनों के पूजित विग्रह थे, नारायण इष्ट देवता माने जाते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, और जबकि कृष्ण ही उनके प्रेमास्पद प्राण प्रियतम है। इस प्रकार कृष्ण भी कह रहे हैं कि हम सेवी आवि नारायण, लोक लीला में तो नारायण की सेवा की बात कही है, और कहीं पर सेवी आवि नारायण प्राणों की उपासना करते हैं, यानी ब्रज गोपियां जब विरह में अधीर हो जाती हैं, उस समय उनके हृदय में प्राणों में आविर्भूत होकर प्राणों की रक्षा करते हैं, उनके स्फूर्ति में आविर्भूत होकर के लीला विलास करते हैं उनके साथ, परंतु प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं पड़ते। तो उसको कभी गोपियां स्वप्न मानती हैं, तो झूठ मानती हैं, तो कृष्ण ने इस तरह से समझाया, सांत्वना दिया, इस प्रकार के विरहमय प्रेम को बढ़ाया, और उसके द्वारा राधा कृष्ण के जो नित्य मिलन है ब्रज गोपियों के साथ में, ब्रज लीला के श्याम सुंदर ब्रज चंद्र आनंद कंद नित्य ही वृंदावन विलासिनी होकर, ए विलासी होकर के वृंदावन विलासिनी राधा जी के साथ नित्य विहार परायण है। ये मथुरा मंडल नित्य धाम है, मथुरा में यत्र भगवान नित्य सन्निहितो हरि, मथुरा में भगवान नित्य काल विराजमान है, नित्य ही भक्त जनों के इस प्रकार प्रेम को बढ़ाते हुए विराजमान है। आज प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, ऐसे ही हम लोगों की प्रेमावृत्ति बढ़ाए, अपने चरणों में अनुराग बढ़ाए, इतना कह करके हम यहाँ से चलते हैं।
लोगों
ने वहाँ श्रवण किया था कि श्रीनाथ जी श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी ने प्रकट किया था गोपाल जी को। श्री माधवेंद्र पुरीपाद जब आए गिरिराज गोवर्धन पर और गोपाल जी ने उनको दूध पिलाया, और इसके बाद कहा कि कवे आसी माधव मोरे करी वे सेवन, तुम्हार लागी करी यानी बहु प्रतीक्षा, तो माधव कब आकर के मेरी सेवा करेंगे, तुम्हारे लिए मैं बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा। तब वहाँ पर उन्होंने माधवेंद्र पुरीपाद जी ने गोपाल जी को प्रकट किया और अन्नकूट उत्सव किया। इसके बाद में जबकि चंदन लेने को चले गए और सेवा पूजा की व्यवस्था करके छोड़ गए, तो धीरे धीरे ये सेवा पूजा श्री बल्लभ संप्रदाय के हाथ में आए, और श्री वल्लभाचार्य जी की सात पुत्र हुए, तो उनमें ये सात घड़ा कहलाता है, तो इसी सात तो सत घड़ा में यहाँ पर ये सभी लोग इतने प्रेमी थे, भक्त थे, ब्रजवासी जिनके प्रेम से ठाकुर जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए, यहाँ आकर के उन ब्रजवासी महिलाएं जो हैं भक्त, ये उन्हीं के प्रेम में उनकी सेवा पूजा आदि ग्रहण किए हैं। इस तरह से यहाँ बहुत दिन होता ही रहे, जब किसी बल्लभाचार्य जी पीछे, श्री विठलनाथ जी पीछे आए, तब यहाँ से ठाकुर जी फिर गोवर्धन गए। इस प्रकार से वर्तमान श्रीनाथ जी जो नाथद द्वारा में है, उन्हीं का यह स्थान है, यह प्राचीन स्थान माने जाते हैं, इसलिए परिक्रमा में हम सभी लोग दर्शन करते हैं। यह महाराज जी और सभी वैष्णव लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ तक कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए इस प्राचीन स्थान को हम प्रणाम करते हुए चलते हैं।
आज गुरु वैष्णवों के अनुगत में जहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ गोवर्धन के तराई क्षेत्र में पैठा नामक गाँव जिसको पेंट वन कहा जाता है, कृष्ण ने जिस समय लीलाएं की हैं, ये समस्त गंभीर वन प्रदेश जंगल के रूप में था, अति मनोरम और यह प्रेममय लीलामय भूमि। ये समस्त भूमि ऐसी है जहाँ राधा कृष्ण की संभोग और विप्रलम्बमय लीलाओं के उद्दीपन कराते हैं। यहाँ पर राधा
कृष्ण भिन्नता होगी, उतना ही धाम अपना स्वरूप प्रकाश करेंगे। एज यू हैव ऑनर, एज यू आर सो लिनियंट, धाम वेलकम इन अवर हार्ट। हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, परिश्रम विफल नहीं जाए। वी आर सो मच डूइंग हार्ड लेबर, बट इन वेन इट शुड नॉट गो। सो विथ सो ऑनर वी शुड डू ऑल गौ प्रेमानंद। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये चंद्र सरोवर है। इस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर है। चंद्र सरोवर इसलिए है कि यहाँ पर रास हुई थी और इस रास में चंद्र चलना भूल गए, तारे चलना भूल गए, बटेजान तारे चंद्र सब ग्रह नक्षत्र सूर्य इत्यादि सभी लोग, सूर्य जब रात में पीछे थे वहीं पर रह गए, फिर इधर में आए नहीं, और चंद्र यहाँ के यहाँ पर खड़े रह गए, तारा और नक्षत्र सब चलना भूल गए कृष्ण का ये रास्ते करके। देवता लोग विमानों में अपनी स्त्रियों के साथ में आए, देवताओं ने देखा कृष्ण को, कृष्ण का रूप देख करके ही वो मुग्ध हो गए, बाकी रास उन्होंने नहीं देखा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसा वर्णन किया, रास दर्शन करने का सौभाग्य नहीं हुआ, उनकी स्त्रियों ने रास को दूर से दर्शन किया और वो पागलिनी बन गई, उनके केश खुल गए, अपने पतियों के गोदी में रहते हुए और मूर्छित होकर के गिर गई, शुद्ध बुद्ध नहीं रही, बाकी का रास नहीं देखा, केवल एक झलक देखा उसी में मूर्छित होकर के सब गिर गए। और चंद्र यहाँ पर ताराओं के साथ में, अपने सब नक्षत्रों के साथ में ब्रह्मा की एक रात जिसमें कितने सतयुग कितने कलि 1000 चतुर्युग इसमें बीत गया, और चंद्र अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ, सूर्य भी इधर में नहीं आए, जितने ग्रह नक्षत्र बृहस्पति इत्यादि सब कुछ एक झलक कृष्ण का देखा रूप, इसलिए अपने स्थान से नहीं गए, इसलिए चंद्र प्रतिबिंबित हुआ यहाँ और कृष्ण की रास को एकदम प्रकाशित किया, और चंद्र यहाँ पर खड़ा रहा, इसलिए इसको नाम है चंद्र सरोवर। यहाँ पर हमारे गोस्वामी लोग भी रहते थे, पीछे से ये स्थान और वहाँ पूछ रहे ऊपर में जो गोपाल जी थे, जतिपुरा के ऊपर में जो गोपाल जी थे, उन विग्रहों का पूजन करने का रूप और रघुनाथ गोस्वामी ने उनके हाथों में दे दिया। इनके बड़े मित्र थे विट्ठल जी, जो कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे दूसरे नंबर के, इसलिए उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी का उनके ऊपर में प्रभाव था। उन्होंने कहा, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर आराधिका रसिक मान कृपा निधे स्व प्रिया चरण किंकरी करो। ओ श्याम सुंदर, यदि आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हो तो बस यही चाहता हूँ, आपकी प्रिया श्रीमती राधिका जी हैं, आप शिखंड शेखर हैं, मुरली मनोहर है, राधिका के रसिक हैं, आप हम पर कृपा कीजिए, तब यही चाहता हूँ कि अपनी प्रिया जी की चिर काल के लिए हमें किंकरी बना दीजिए और कुछ नहीं सर। प्राणनाथ विषभानु नंदिनी सी मुखाब्जर श्लोल सरपत राधिका पद तले कृति स्थित स्वाम भजानी रस केंद्र से। हे रस केंद्र शेखर, आपके चरणों का मैं भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ। आप अनुग्रह करके अपने श्रीमती राधिका जी के नित्य काल के लिए किंकरी की किंकरी हमको बना दीजिए। वल्लभाचार्य जी इस स्थान में रहे और उसके बाद में उनके गोपीनाथ जी उनके ज्येष्ठ पुत्र हुए और उनके छोटे भाई विठल जी। विठल जी बहुत प्रतापशाली प्रभावशाली आचार्य हुए। सूरदास जी वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे, अष्टछाप के कवि हैं आठ, उनमें सबसे प्रधान यही हैं। इनका सूर सागर ग्रंथ है जो अब संकलित करके प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कृष्ण के लीला चरित्र का विशेष करके बात्सल्य रस का वर्णन किया और वल्लभाचार्य ने उनको यही स्थान दिया कि चंद्र सौ में रह करके सेवा करें। सेवा करते करते अद्भुत विलक्षण रूप में अंधे हैं किंतु सब कुछ देखते हैं। अंधे हम लोग हैं जो नहीं देखते, ये सब जगत की चीजों को देखते हैं, प्रभु का रूप नहीं देखते। वो अंधे नहीं थे। एक बार भक्तों ने कहा, सूरदास जी आप कृष्ण कैसे हैं इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। सवेरे का समय था, उस दिन सारे कपड़े उनके हटा दिए गए नंगे, गोपाल है ना, नंगे उनको खड़ा कर दिया ठाकुर जी को, उनको सब कपड़े हटा दिए गए और वो सब लोग देख रहे थे। सूरदास जी पूछा आप वर्णन कीजिए, तो सूरदास जी ने उनका वर्णन किया। आज तो आपकी बड़ी छवि बनी है, आप तो आपने कोई आज कपड़ा ही धारण नहीं किया, नंग धड़ंग आप ऐसे ही खड़े हुए हैं। लोगों ने कहा कि ये कैसे जान लिए सूरदास ने, उनकी आत्मा की दृष्टि होती है। भक्त लोग अपने समाधि में उनका दर्शन करते हैं अपने आत्मा से, जो हम लोग इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम सांसारिक चीजों का दर्शन कर सकते हैं, पारमार्थिक चीजों का हम दर्शन इन आंखों से भक्ति का दर्शन नहीं कर सकते हैं, गुरु का दर्शन नहीं कर पाते, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। ये लोग यथार्थ रूप में दर्शन करते हैं। हमारे रूप सनातन जी ने जैसा दर्शन किया है, मदन मोहन जी का, गोविंद उनके लिए आ गए, मदन मोहन जी आ गए, गोपीनाथ जी उनके लिए आ गए, ऐसे ये सब लोग महात्मा हैं। इनके भीतर में हम चल करके अभी देखेंगे, दर्शन करेंगे। इनका स्थान है, ये चंद्र सौर है, चंद्र सौर का आचमन लीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो लीला हम लोगों के हृदय में स्फूर्ति हो। यही प्रार्थना करके हम अब वहाँ पर चलेंगे। सूरकुटी है, यहाँ पर वल्लभाचार्य जी का एक बहुत बड़ा भारी वैभव था, बहुत ही समृद्ध यहाँ पर उनकी सेवा होती थी। आजकल कुछ सूना सा हो गया है, ऐसा उजड़ा उजड़ा सब वक्त ही नजर आता है। वृंदावन अपने धाम में पूर्ण है, लोग वृंदावन को सजाना चाहते हैं, यमुना के किनारे बांध बांधना चाहते हैं इसको, किंतु वो संपूर्ण ऐसा है, मणिमुक्ताओं से बंधा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग स्थूल दृष्टि वाले इसको सजाने की चेष्टा करते हैं, किंतु वो तो अपने में परम सुंदर है। बोलो चंद्र सरोवर की जय, रास लीला की जय, वल्लभाचार्य की जय, विठ्ठलाचार्य की जय, गोपीनाथाचार्य की जय, सूरदास की जय, गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोलो।
राधा जी इत्यादि सभी उनकी कृपा चाहती हैं। जब वो आकर के उनके चरणों में गिर जाती हैं राधिका जी, तो उनको गोदी में उठा लेती हैं, कहिए तुम हमारा बेटा है, कृष्ण से कम नहीं, कृष्ण एक बेटा है तो तुम है, किंतु तुम हमारा अधिक बेटा है,
अधिक प्रिय है।
इसलिए ब्रजकुल महिलानं प्राणभूताखिलानं
पशुपति गृहिण्या,
हाँ पशुपति गृहिण्या कृष्णवत प्रेम पात्रम, ये राधिका जी ऐसी हैं। इसलिए जसोदा जी जा रहेंगी, सब गोपी लोग राधा जी चंद्रावली प्रभृति जितनी हैं ललिता विशाखा उनको आशीर्वाद देती है तो बतलाओ तो, और यदि उनकी कृपा नहीं होती तो ये मिलन में बाधा आ जाती। बुलाती हैं कैसे अपने घर में रसोई के लिए और उनसे मिलन कराती हैं। वो सब जानती हैं किंतु कुछ नहीं जानती ऊपर से। वैसे ही माताएं होती हैं अपने पुत्र वधु के साथ में, सभी ऐसे जो गुरु घंटाल हैं वो सब समझती हैं। गौ प्रेमानंदे योग लिखा है बैठक, मतलब क्या कि पहले वल्लभाचार्य जब यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए तो तो लोगों ने उनको दर्शन करने नहीं दिया,
कृष्णदास जी
बल्लभाचार्य
कवियों में थे।
अच्छा अच्छा, तो बल्लभाचार्य की ये बैठक है यहाँ पर, ये प्रधान उनकी गद्दी है, सूरदास इत्यादि का है, अष्टछापों में से एक कोई कृष्णदास जी हैं, कृष्ण के सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। तो जब आए तो उन लोगों को एक नियम है, यहाँ से कोई प्रवेश करता है उसमें वही प्रवेश करता है जिनका ब्रह्म संबंध हो गया है। ब्रह्म संबंध माने क्या?
भगवान
के साथ कुछ अनुभूति
तो भगवान
उधर से जाएगा कोई तो झाड़ी भरेंगे, पानी कुछ रहता है ग्लास इत्यादि, और जिनका ब्रह्म संबंध नहीं हुआ वो नहीं जाएंगे। तो कृष्णदास को यह कह दिया गया तुम्हारा ब्रह्म संबंध नहीं है, तुम नहीं दर्शन कर सकते। वो बड़े विरह में हो, आतुर होकर के तो यहीं पर बैठ गए और वो दर्शन को नहीं जा सके। पीछे से लोगों को जब प्रतीत हुआ होगा तब फिर उनको लेकर के गए हों। बस ये है विप्रयोग का। गौर प्रमाण सांप्रदायिक तथ्य है, अपना सांप्रदायिक तथ्य है। राधा जी का भाव ही ऐसा है कि उनके प्रेम में धक्का भी लगा, कैसे पाऊं, कैसे हमारे हृदय में ऐसा प्रेम हो जो हमको जैसा ये देखती है प्रेम से, मैं भी ऐसे ही किसको। एक सुना आर लो, ये क्या बतलाया, ये राधिका की प्रणय महिमा कैसी है, ये यहाँ सब हुआ। राधा या प्रणय महिमा के दृष्टा ये पहला हुआ। एक सुना, एक तो एक ये हुआ, आर सुना आर लोभेर प्रकार, आर सुना आर लोभेर, और जो दूसरा जो कारण है उसको सुन, पहले वाला आप सुना, इसलिए सुनो में एक में मतलब है, सुनो एक ऐसा नहीं, एक माधुरी को सुन करके कभी कभी देखते हैं कि गोपियों का कैसा भाव हो जाता है, और कभी कभी बजाते बजाते उन्हीं के कानों में जब आती है तो अपने आप मुग्ध हो जाता है। मधुर है क्योंकि जब ही दर्पण में प्रतिबिंब में या विशेष करके द्वारका में वो क्या लीला हुई थी, नौ वृंदावन की लीला, उसमें उन्होंने देखा अपने मणि के स्तंभ में उसने पृथ्वी को ललित माधव का वर्णन किया। तो वह कृष्ण का माधुर्य कब देखा, जबकि बलदेव जी ने उनको हाथों में बंसी दे दी, सोने का मुकुट हटा दिया ब्रह्मांड जी के कहने से, और उसने मोर मुकुट दे दिया, और ब्रज जैसे ही उनके कपड़े लत्ते का पहना दिया और हाथों में भी बांसुरी दे दी, बलदेव के द्वारा उनको उठाया, और बलदेव लजाते कृष्ण लजाते लजाते उठे, और यशोदा जी के हाथ से उन्होंने वो लिया, और लेने के बाद मक्खन लजाते लजाते ये मैया हमको ऐसे देव से सोते हुए देख करके कुछ ऐसे स्तंभित हो गई। रोहिणी मैया जी ने उनको आदर जाति में कुछ किया, और वहाँ से जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण का रूप एकदम सजल गया, एकदम ब्रज का भाव। उस समय में कैसे चलते हैं, अंगभूमि कैसे होती है, उनके तरफ में गोपियों की तरफ में कैसे देखते हैं, उस समय में प्रतिबिंब उन्होंने देखा और देख सकते, और मेरी माधुरी ऐसी है कि जामोन्ती सप्तभामा रुक्मिणी प्रवेश की सप्तभामा एकदम पागल हो गई, यहाँ तक कि पद्माधुरी वो बूढ़ा सुखा हुआ पेड़ में भी रखा गया और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी, देख सकते थे थोड़ी देर के बाद में जब उनको पता चला समुद्र को देखा बलदेव जी
कथा सुनने लगे तो अरे ये तो वृंदावन नहीं है, गाय कहाँ है, ये तो कुकलियाँ हैं, अरे ये तो गोपियाँ नहीं, ये तो मूर्तियाँ हैं, कहाँ है हम यहाँ पर समुद्र कहाँ से वृंदावन में आ गए, तो ये वृंदावन ही तो क्या है, धीरे धीरे बन गई है पूर्व कष्टमास्कारधारी गलियानेहमी हंस प्रेक्षुचेता सरसम भुक्त कामये राधि राधिका की जैसी ललता होती है कृष्ण की पुरुष माधुरी को गैरी माधुरी को लीला माधुरी को ये सब देख करके वो खुद ही समर्पित होकर के राधिका जैसे आस्वादन करती है ऐसे उनके अंदर में लाल ये मदनना स्वभाव का रूप है राधिका जैसे यही दूसरा कारण है किसी का दूसरा लोक है अनंत अद्भुत पूर्ण मोर माधुरी अद्भुत अद्भुत माने उनका पवित्र जो कभी नहीं हुई हो वो होता है और तो भूत जो राम इत्यादि किसी भी रूप में जैसा नहीं हुआ और अनंत एक ही लीला माधुरी का हमको ये भी वर्णन किया किसी विवाह को किसी किसी केवल राशि का विलास नहीं आप अपने सबका वर्णन नहीं किया उसको करने के लिए आदेशा विकास और उनके अंदर में और कितना सरवती का कुछ भावों को लीलाओं को जो उसे भाव हृदय में सब कुछ समाधि में भागवत में कई को एक राशि का वर्णन करके अनंत ऐसे लीलाए हैं पूर्ण और वो पूर्ण है मोर माधुरी मधुरी मधुरी श्री जगत के बिहार के हो नहीं